Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Param Shuddhaya Pratasmaraniya Prempuriji Maharaji Evam महाराज श्री के पावन चरणों में नमन करते हुए कठोपनिषद की द्वितीय वल्ली का प्रथम मंत्र अन्यत् श्रेयो अन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषं श्रीनीतः तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद्य उपेयो वृणीते। प्रथम वल्ली आप लोगों ने श्रवण की, द्वितीय वल्ली का हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। कठोपनिषद के ऋषि कठ हैं और ये कठोपनिषद काठकोपनिषद अत्यंत महत्वपूर्ण उपनिषद। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं प्राचीन समय में व्याकरण और कठोपनिषद का गांव-गांव में अध्ययन हुआ करता था। ये इतनी प्रसिद्ध उपनिषद है। पहले वल्ली में वेदांत का अधिकारी कैसे होना चाहिए इसका प्रतिपादन किया है और केवल नीति की बात नहीं कही, बालक नचिकेता की जीवन दृष्टि पर सूत्रपात करते हुए जीवन से अधिकारी कैसा होना चाहिए ये बात बता दी। संपूर्ण बालक नचिकेता का जीवन, उनके जीवन में सत्य निष्ठा है, शास्त्र निष्ठा है, सत्यवादिता है, इंद्रिय संयम है, तत्परता है, परमात्मा को पाने की अभिप्सा, ये सारे जो अधिकारी के लक्षण हैं वो बालक नचिकेता के जीवन में परिलक्षित होते हैं। ये प्रथम वल्ली में बता दिया है। उनके जीवन में श्रद्धा, संयम, आस्तिक की बुद्धि तो बहुत मने परिपूर्णता है। एक साधक के जीवन में क्या होना चाहिए ये अपने को यदि देखना हो तो बालक नचिकेता के जीवन को देख ले। और इस दूसरे वल्ली में अब तत्व ज्ञान की महिमा, प्रशंसा, उसका महात्म्य प्रतिपादन कर रहे हैं। इतना ऊंचा अधिकारी बालक नचिकेता मिला और अब वो चीज क्या है जिसको वो पाना चाह रहे हैं और उस चीज को पाने के लिए कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं, तो अब बालक नचिकेता की भी स्तुति करना है। केवल ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान की ही स्तुति नहीं है, बालक नचिकेता की भी स्तुति करना है। और उसी की ओर इशारा करते हुए श्रुति यहां बहुत स्पष्ट और सुंदर शब्दों में कहती है, मार्ग दो हैं, अन्यत् श्रेयो अन्यत् दुतैव प्रेयः। एक मार्ग श्रेय है और दूसरा मार्ग प्रेय है। एक मार्ग ज्ञान का है और दूसरा मार्ग अज्ञान का है। एक मार्ग विद्या का और दूसरा अविद्या का। एक मार्ग योग का और दूसरा भोग का। लेकिन इन्होंने शब्दों में अंतर कर दिया, श्रेय और प्रेय। जो श्रेय मार्ग है वो योग मार्ग है, विद्या का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, और जो प्रेय मार्ग है अविद्या का मार्ग है। वह ज्ञान का मार्ग लेकिन बड़ा प्रिय है। यहां श्रुति कहना चाहती है अज्ञान का मार्ग लेकिन बड़ा प्रिय है। वो ये संसार का भोग का जो मार्ग है ये श्रेय माने श्रेष्ठ नहीं है लेकिन वो है बड़ा प्रिय। प्रेय माने प्रिय मार्ग है। आपको सत्संग सुनने में ज्यादा प्रियता मालूम पड़ती कि सोने में? अपने को सोना है और दूसरे तरफ अपने को जगना है और सत्संग सुनना है, तो दोनों में से कौन सा मार्ग आपको अच्छा लगता है? सत्संग सुनना अच्छा लगता है लेकिन नींद आ जाए तो यदि नींद आ जाए सत्संग में आप सोना नहीं चाहोगे मुझे मालूम है, लेकिन नींद में बड़ी प्रियता है, उसमें बड़ी प्रियता है। आदमी सत्संग में भी सोने की स्वीकृति दे देता है। नींद आ जाती है ना, आदमी सोता चलो क्या स्वामी जी को क्या पता है? उनको क्या मालूम पड़ेगा, थोड़ा आंख बंद कर लेंगे वो सोचेंगे कि ये बहुत ध्यानस्थ होके सुन रहे हैं। ये मार्ग जो है ना प्रिय का, प्रियता का मार्ग है। आपने भागवत में सुना, कई बार सुना होगा ध्रुव का चरित्र, और वहां जो उपाख्यान है ध्रुव का चरित्र बहुत ही सुंदर, बिल्कुल इस श्लोक के साथ मिलता जुलता। वहां राजा उत्तानपद और उनकी दो पत्नियां हैं, एक है सुनीति और दूसरी सुरुचि। ये उत्तानपाद जीवात्मा है, ये कठोपनिषद का जीवात्मा है नचिकेता, ये जीवात्मा उत्तानपाद। उत्तानपाद का अर्थ होता है उत्तान, है ना? माने उत्थान, माने उत्कर्ष, ऊर्ध्वमूल वो परमात्मा, और वो स्वरूप है पाद माने स्वरूप, जिसका माने ऊर्ध्वगामी। जीवात्मा का जो स्वभाव है ना ऊर्ध्वगामी स्वभाव है। हम उठना चाहते हैं कि गिरना चाहते हैं? हम ज्ञान चाहते हैं कि अज्ञान चाहते हैं? आपका स्वभाव उठना है, ऊर्ध्वगामिता, और जो स्वभाव है ना वही स्वरूप होता है। जो ऊर्ध्वगामिता जो हमारा स्वभाव है वही स्वभाव हमारे मूल में होने का स्वभाव है, हमारा मूल स्वभाव है। जैसे मैं आपको उदाहरण में बता दूं, पृथ्वी का मूल क्या है? पृथ्वी, आप पत्थर उठा लो और पत्थर उठा करके ऊपर आकाश में फेंको, वो पत्थर किधर आएगा? क्यों? उसका मूल है, उस पत्थर का मूल पृथ्वी है। आप कितना भी ऊपर जाए लेकिन वो पृथ्वी की तरफ आएगा क्योंकि पृथ्वी उसका मूल है। आप जल गिराओ, जल किधर बहेगा? उसका मूल क्या है? समुद्र है, तो वो समुद्र की तरफ बहेगा। जहां भी जल गिरता है वो नीचे की ओर बहना माने समुद्र की तरफ यात्रा है उसकी, क्योंकि उसका मूल समुद्र है। निकला समुद्र से, आया समुद्र से, और वो जाना भी चाहता है समुद्र में। अग्नि का मूल सूर्य है, और आप जैसे ही आप माचिस जलाओ वो अग्नि किधर उठती है? ऊपर उठती है, लाओ उसके ऊपर। ये क्या ऊर्ध्वगामिता? अग्नि का मूल सूर्य है, इसलिए अग्नि हमेशा सूर्य की तरफ यात्रा करती है। उसी प्रकार हमारा मूल क्या है? मानव मात्र का, जीव मात्र का मूल क्या है? परमात्मा। और इसीलिए हमारी जो गति है ना, प्रगति हमारी परमात्मा की तरफ, सत्य परमात्मा है। और हम अपने मन से क्या चाहते हैं, सत्य चाहते हैं कि असत्य चाहते हैं। कितना भी बेईमान आदमी हो वो भी अपने लिए ईमानदारी चाहता है, कितना भी झूठ बोलने वाला आदमी हो लेकिन वो भी चाहता है कि लोग मेरे से सत्य बोले, कितना भी बड़ा अज्ञानी आदमी हो वो भी क्या समझता है, मैं समझदार हूं। कितना भी बड़ा अज्ञानी हो, कितना भी बड़ा अशिक्षित आदमी हो, वो भी कई मामले में अपने आप को शिक्षित समझता है, दूसरे को बेवकूफ समझता है। ये उसका मूल स्वभाव है, वो ज्ञान की तरफ उसकी अभिरुचि, समझदार बनने की अभिरुचि ही सिद्ध करती है कि परमात्मा ज्ञान उसका स्वभाव है, उसका मूल है, उत्थान उसका मूल है, स्वभाव है, ऊर्ध्वगामिता उसका मूल है, स्वभाव है। ये उत्तान पाद जो है ना, ये ऊर्ध्वगामिता, ये जीवात्मा का प्रतीक है। लेकिन मजेदार बात, उनकी दो पत्नियां हैं, एक सुरुचि और दूसरी सुनीति, मार्ग दो हैं। अब किधर मन बहे, अब सुरुचि है ना, रुचि है, ये प्रेय मार्ग है, ये जो कठोपनिषद का प्रेय मार्ग, सुरुचि प्रेय मार्ग है, और रुचि है, वहां भोग है, विलास है, वो बहुत सुंदर है। और जो सुनीति है ना, वो बड़ी है, उसके साथ नीति, धर्म, न्याय, सत्यवादिता, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अब बालक नचिकेता किधर ध्यान देना, बालक नचिकेता का जीवन ऊर्ध्वगामिता, बालक नचिकेता का जीवन आपके उत्तानपाद की तरह नहीं है। वहां दो रास्ते हैं, एक प्रिय मार्ग और दूसरा श्रेय मार्ग, लेकिन उत्तानपाद श्रेय मार्ग की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, वहां प्रिय मार्ग की तरफ, सुरुचि की तरफ झुकते हैं। और बालक नचिकेता सुनीति की तरफ झुकते हैं। वहां दो मार्ग हैं, श्रेय और प्रेय, लेकिन बालक नचिकेता प्रिय मार्ग का वर्णन नहीं करते हैं, बालक नचिकेता श्रेय मार्ग का वर्णन करते हैं। और यही हमारा पुरुषार्थ है, जीवात्मा का जो पुरुषार्थ है ना, यही है कि हम अपने जीवन को, मन को हम प्रियता की ओर न ले जाए, हम अपने जीवन को श्रेयता की ओर ले जाए। और ये जो प्रियता है ना, ये प्रवाहित होना, जैसे आप नदी में बह रहे हैं और आप नदी में तैर रहे हैं, दोनों में अंतर है, बहने में और तैरने में अंतर है। कोई आदमी बह रहा है, बहने के लिए कुछ करना पड़ता है कि तैरने के लिए कुछ करना पड़ता है, बहने के लिए क्या करना पड़ता है, आप बह रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं क्या, आप बोलते हैं क्या, भैया मैं बह रहा हूं, क्या हाँ मेरी इच्छा हुई बहने की, बह रहा हूं, बहने के लिए क्या करना है। पुरुषार्थ आपका बहने के लिए नहीं है, पुरुषार्थ तैरने के लिए, तैरने में पुरुषार्थ है। वो धारा, नदी की धारा आपको काटनी पड़ेगी, विपरीत दिशा में अपनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी। ये जो श्रेय मार्ग है ये तैरने की तरह है, और जो प्रेय मार्ग है वो बहने की तरह। आप काम में बहते हैं, क्रोध में कुछ करते हैं क्या, आप बोलते जरूर है कि मैं क्रोध करता हूं, लेकिन क्रोध करना आपके हाथ में है क्या। क्रोध करना यदि आपके हाथ में होता तो क्रोध नहीं करना भी आपके हाथ में होता, जान लेना। काम आपके हाथ में होता तो उसका, उस पर नियंत्रण करना भी, अकाम भी आपके हाथ में होता। आप चलना आपके हाथ में है ना, है तो बैठना आपके हाथ में, जाए तो आप बैठ सकते हैं। आप देख रहे हैं तो देखना आपके हाथ में है, और आपकी इच्छा होगी चलो आंख बंद कर ले, कर सकते हैं ना। यदि प्रवृत्ति आपके हाथ में है तो निषेध भी आपके हाथ में होगा। आपके हाथ में चलना है तो बैठना भी आपके हाथ में होगा। आपके हाथ में भोजन करना है और आपकी इच्छा हुई नहीं करना है, नहीं करना है, आपके हाथ में होगा। वैसे ही यदि क्रोध करना आपके हाथ में होता तो नारायण नहीं करना भी आपके हाथ में होता, काम आपके हाथ में होता तो अकाम भी आपके हाथ में होता, वासना आपके हाथ में होती तो वैराग्य भी आपके हाथ में होता। लेकिन मजेदार बात, ये क्रोध हमारे हाथ की चीज ही नहीं है, पता नहीं कहां से आता है क्रोध, और आने के बाद हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं, वो हमारे ऊपर छा जाता है। वो इसलिए भगवान ने कहा स्मृति भवंस तक ले जाता है हमें। स्मृति माने शास्त्र, ध्यान देना, स्मृति माने शास्त्र, स्मृति माने सद असत का विवेक, छोटे बड़े का विवेक, स्मृति। और उस समय सब कुछ भूल जाता है आदमी, स्मृति खो देता है। और जहां अच्छा काम करना है वह अच्छा नहीं कर पाता है, जहां जैसा नहीं बोलना वैसा बोल नहीं पाता, विपरीत बोल जाता है। इसलिए क्रोध हमारे हाथ में नहीं, क्रोध करने की स्वतंत्रता हमारे में नहीं। इसलिए क्रोध में हम तैरते हैं कि बहते हैं, बहते हैं, बह गए है ना, बह गए, काम में बह गए, लोभ में बह गए, और अकाम, अक्रोध, वैराग्य, ये बहने का मार्ग नहीं, तैरने का, पुरुषार्थ का मार्ग। वेदांत में आप अनादि मानते, अज्ञान को अनादि मानते हैं ना, आपने कभी शब्द सुना हुआ वेदांत में अज्ञान अनादि है। और बड़ी मजेदार बात, हमें ज्ञान के लिए कुछ करना पड़ता है कि अज्ञान के लिए? आपने अज्ञान में कोई डिप्लोमा किया है क्या? आप ज्ञानी ज्यादा है कि अज्ञानी ज्यादा है? हा? आप समझदार ज्यादा है कि ना समझ ज्यादा है? आप बुरा मत मानना, ये मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, ये तो हम जानते कितना, बहुत कम जानते हैं ना, बहुत कम जानते हैं, कितना कम जानते हैं हम। अभी मुझे लगता है कि आप जहां बैठे हैं बिना देखे आप ये नहीं बता सकते कि आपके पीछे कौन बैठा है ना, आपके बिल्कुल बगल में बैठा है पीछे है, लेकिन आप नहीं बता सकते हैं कि कौन बैठा है, कब से बैठा है, बगल वाले के पर्स में क्या है मालूम है क्या? नहीं मालूम। बगल वाले के पर्स में क्या है ये नहीं मालूम, इसके जेब में क्या है ये नहीं मालूम, और दूसरे के पर्स की तो बात ही छोड़ो, कई बार तो अपने को ये भी नहीं मालूम पड़ती कि हमारे पर्स में क्या क्या रखा हुआ है। आदमी भूल जाता है, हमारी आंख कैसे काम करते है मालूम है, कान हमारे कैसे काम करते मालूम है, आपके पेट का सिस्टम कैसे खाए पे पदार्थों को पचाता है इसका कुछ पता है? कुछ नहीं, हमारे सिस्टम का ही हमें पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। और पता भी है तो थोड़ा थोड़ा पता है, आंखों से दिख गया, कानों से सुना, थोड़ा चखा, थोड़ा सा पता है, और उस थोड़े से पते से ही हम लोगों का काम चल रहा है, थोड़े से समझदारी से ही काम चल रहा है। लेकिन अपने को कभी लगता है क्या कि हम ना समझ हैं? नहीं लगता है, हमेशा ही हम अपने आप को समझदार समझते हैं। लेकिन ना समझी जो हमारे जीवन में है, ये कहीं से आई है, लाया है क्या आपने? अज्ञान को जलाने की जरूरत नहीं पड़ी, ज्ञान को जलाने की जरूरत पड़ती है, अज्ञान को सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्ञान को सीखने की जरूरत पड़ती है। ये सारे जो आयोजन, जितने भी धर्म, संस्कृति, प्रवचन और ये सारी यूनिवर्सिटियां, ये सारे हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए कि अज्ञान को बढ़ाने के लिए? लेकिन आश्चर्य की बात, इतना होते हुए भी हम ज्ञान में एक्सपर्ट हैं कि अज्ञान में? ये सारे शास्त्र हमको कहते क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, लेकिन ये इतनी सारी शिक्षा, आपने अक्रोध पर तो डिप्लोमा किया होगा, क्रोध नहीं करना चाहिए, आपने कभी कक्षा ज्वाइन की क्या? क्यों मैं पूछता हूं, क्रोध नहीं करना चाहिए, इस पर आपने कभी कक्षा ज्वाइन की? क्यों नहीं भैया, यहां भी ये प्रवचन उसी पर तो हो रहा है। आप सारे सत्संग श्रवण करते हैं, आप किस पर श्रवण करते हैं? ना संयम करो, झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो, विकारों पर नियंत्रण रखो, वासनाओं पर नियंत्रण रखो। आपके सारे ये प्रवचन, ये क्लास ही तो हैं, आपको शिक्षाएं तो दे रहे हैं। तो आपने अक्रोध, अकाम, निष्काम, सत्य, दया, करुणा, संयम आदि के ऊपर बहुत सारे लेक्चर आपने सुन लिए, लेकिन आपने कभी क्रोध करो इस पर कभी लेक्चर अटेंड किया क्या? काम, क्रोध, असत्य, असंयम, इसको बढ़ाने के लिए आपने कभी कोई एक दो दिन का कोर्स किया? नहीं। लेकिन एक्सपर्ट हम क्रोध में हैं कि अक्रोध में हैं, जिसकी कोई शिक्षा नहीं? आप बालक नचिकेता को पूछो। क्रोध आपको सहज प्राप्त है, सहज प्राप्त है, आप करते नहीं है, वहां आपका पुरुषार्थ भी नहीं है। सारे शास्त्र, सारे साधन अक्रोध के लिए, और क्रोध पता नहीं कहां से आता है, ये बहता है, क्रोध जो है ना बहता है, और उस क्रोध में हम भी बहते चले जाते हैं। इसलिए क्रोध करने में पुरुषार्थ नहीं है, क्रोध नहीं करने में भी पुरुषार्थ नहीं है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। यदि क्रोध करना पुरुषार्थ होता तो नहीं करना भी पुरुषार्थ होता। इनका प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है, प्रासंगिक प्रश्न है। फिर क्रोध पर नियंत्रण कैसे किया जाए? भाई क्रोध करना भी हमारे हाथ में नहीं है और क्रोध नहीं करना भी हमारे हाथ में नहीं है। और सबसे ज्यादा हम परेशान किससे हैं? सबसे ज्यादा परेशान हम क्रोध से हैं। हम क्रोध करते हैं सामने वाले को परेशानी, और सामने वाला क्रोध करता है तो हम परेशान हैं। और ये क्रोध की जो बात है ना, ये क्रोध तीन स्तरों पर अभिव्यक्त होता है। सबसे पहला क्रोध हमारे मन में अंकित होता है, कभी आपने ध्यान दिया होगा, सबसे पहले क्रोध की तरंग हमारे मन पर उठती है, मन में उठता है क्रोध, और वो क्रोध फिर तरंगायित होता हुआ हमारे शरीर पर प्रकट हो जाता है। वो क्रोध हमारे आंखों में आ जाता है, वो क्रोध हमारे चेहरे पर आ जाता है, तमतमा जाते हैं आप, हाथों में आ जाता है, कई बार क्रोध में आदमी कंपायमान होता है, कांपने लगता है, और उसके ओठ फड़फड़ाने लगते हैं, कुछ बोलना चाहता है, कुछ करना चाहता है। ये क्रोध आपके शरीर पर आ गया, शरीर पर व्यक्त हो गया। और तीसरी जो अभिव्यक्ति है क्रोध की, फिर तीसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। आप गाली देते हैं, वो क्रोध आप तक नहीं रहा, अब आप वो दूसरे व्यक्ति तक आपने पहुंचा दिया उसको। ये तीन अभिव्यक्ति, पहले मन पर, फिर तन पर, और तीसरे नंबर पर व्यक्ति तक, दूसरे व्यक्ति तक क्रोध पहुंच जाता है। और क्रोध की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, अब आप ध्यान देंगे कि आपको क्रोध पर नियंत्रण करना हो तो क्या करना चाहिए। इसका एक पहला उपाय, आप क्रोध जितना करते जाएं उतना ही क्रोध आपका बढ़ता जाएगा। आपके जीवन का एक सूत्र है, जो चीज आप करते हैं वो चीज आपके जीवन में बढ़ती है। आप जो भी चीज करते हैं आप अपने जीवन में, वो चीज आपके जीवन में घटती नहीं है, वो चीज आपके जीवन में बढ़ती जाती है। आप सत्संग करेंगे, आपका सत्संग बढ़ता जाएगा। आप प्रेम करेंगे, आपका प्रेम बढ़ता जाएगा। आप किसी से घृणा करेंगे, आपकी घृणा बढ़ती जाएगी। आप जो भी करते हो ना, वो सामान्य नियम है, आप जो भी करते हैं वो चीज आपके जीवन में बढ़ती जाती है। आप क्रोध करेंगे तो क्रोध बढ़ता जाएगा, और नहीं करने से नहीं करना बढ़ता जाएगा, काम से और काम बढ़ता जाएगा, और उसके नियंत्रण से काम घटता जाएगा, करने से वो चीज और गहरी हो जाती है। आप ध्यान देना, आप जितना करते जाएंगे उतना ही वो चीज और गहरी होती जाएगी, उसकी जड़ें और गहरी होती जाएगी। जैसे पेड़ आप लगाते हैं, उसकी जड़ें जितनी गहरी होती जाती है उतनी ही उसकी शाखा आकाश में फैलती जाती हैं। जितनी उसकी शाखाएं आकाश में फैलती जाती उतना उसकी जड़ें और गहरी होती जाती है। ऐसे ही हमारा आचरण क्रोध बिना शब्द और क्रिया का आश्रय लिए अभिव्यक्त नहीं होता है, एक क्रोध की विशेषता है। आपके मन में क्रोध आया और उस क्रोध को आपको दूसरे तक पहुंचाना है, आप क्या करते हैं? जैसे मानो मैंने आपको कहा कि 1 किलो आप मीठा ले आओ, तो आपने मीठा लाया, लेकिन क्या लाया? जलेबी लाई। हमने तो मीठा बोला था ना, लेकिन आपने क्या लाया? अरे मैंने कहा क्या जलेबी लाया, हमने कहा कि मीठा ले आओ, दूसरे दिन आपने रसगुल्ले लाए। हमने कहा भैया हमने क्या मांगा था और आपने क्या लाया? तीसरे दिन आपने लड्डू ला के रख दिए। हमने कहा भैया हमने क्या मांगा था? मीठा। और आपने क्या क्या भेजा आपने? आपको मालूम है वो मीठा जो है ना, मीठा वो रसगुल्ले को छोड़ के नहीं रहता है, वो मीठा जलेबी को छोड़ के नहीं रहता है, वो मीठा लड्डू को छोड़ करके नहीं रहता है। जब भी आप मीठा किसी को देंगे तो आप मीठा नहीं दे सकते हैं। आप कभी डब्बा भर के मीठा दोगे हमको? आप कैसे दोगे? मीठा हमेशा रहता है वो लड्डू के साथ, जलेबी के साथ, गुलाब जामुन के साथ। ऐसे नारायण क्रोध के बारे में भी है, मुझे आप पर क्रोध करना है, मैं अपने भीतर के क्रोध को आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो कैसे पहुंचाऊंगा मैं? उसके लिए कोई शब्द चाहिए।